जय मां। संसार में बहुत सारी घटनाएं इतिहास में ऐसी हुई हैं जो बहुत आश्चर्य से भरी हुई हैं। कई बार वो उनको हम बिल्कुल एक सहज रूप से ले लेते हैं तो हमको पता भी नहीं चलता कि इसमें कोई आश्चर्य की बात है, क्योंकि जब कभी हम आश्चर्य के बीच में पले बड़े होते हैं तो हमको वो आश्चर्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि हम वैसे ही उसमें बड़े हुए हैं। इन्हीं घटनाओं में से एक भारतवर्ष का इतिहास है। अगर आप कहीं पर भी देखें, चीन, मेसोपोटामिया, यूनान, ग्रीक, इजिप्ट और रोमन, मायन सिविलाइजेशन, कहाँ नहीं जाएं आप, कहीं पर भी चले जाइए, जापान, न जाने क्या हुआ कि ये सारी सभ्यताएं एक समय आया जब ये नष्ट हो गई। कभी आक्रमण हुए, कभी उनके अंदर बदलाव हुए, कई चीजें हुई, लेकिन वो नष्ट हो गई। आप ग्रीस में जाइए, एथेंस, अभी भी हम लोग कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वहां पर वो खंडर के रूप में है वो जगह। थोड़ा ठीक है, उन्होंने लाइट वगैरह लगा दी है उसके चारों तरफ, पर वो जहाँ पे बड़े बड़े ग्रीक असेंबली होती थी, बैठ के लोग डिबेट करते थे, खड़े होके राधर कॉमनर और सब खत्म हो गई हैं। हमारे यहाँ बहुत ये बड़ा आश्चर्य है कि बाहर से जो चीज़ें नॉर्मली कि भाई ये भव्य महल था राम जी का या यहाँ पर ऐसा हुआ था, वो रही हो ना रही हो, लेकिन सनातन सभ्यता निरंतरता से अभी तक रही है। ये एक बहुत अद्भुत आश्चर्य है और इसके पीछे निश्चित रूप से एक तो दैवी कृपा है, लेकिन सबसे अद्भुत बात यह कि ये एक चीज का संकेत है। ये इस शब्द को ही जस्टिफाई करता है सनातन, जिसका आप विनाश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सल है, क्योंकि वो इटर्नल है। शब्द से ही अर्थ आता है। शेरविंद इसको बताते हैं कि आप इसको, यू कैनॉट डिस्ट्रॉय, आप सनातन को नहीं नष्ट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं उसके बारे में कुछ भी, और इस पर पहले भी चर्चा हुई है। उसका एक कारण तो ये रहा है कि सनातन सभ्यता ने सदैव स्पिरिट को कभी नहीं छोड़ा, फॉर्म्स बदलते चले गए। हर बार जो सनातन धर्म की जो स्पिरिट है, जो मूल उसकी आत्म तत्व है, वो अपने आप को एक नया रूप दे करके री इन्वेंट करता है। ये री इन्वेंट करने की चीज जो मानव जीवन के लिए एक सीख है, इसको थोड़ा सा हम डेविएट करके मनुष्य के जीवन में भी एक समय आता है जिसको बोलते हैं मिड लाइफ, और साइकोलॉजिस्ट उसको कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। मिड लाइफ क्राइसिस में क्या होता है, 45-50 की उम्र के आसपास, 45 से 55 आप समझो, शुरू हो जाता है 40 से, लेकिन तो मिड लाइफ में एक समय आता है जब आप अपने जीवन को फिर से इवेल्युएट करते हो कि जो हुआ, जैसे मैं जी रहा था, क्या उसी ढर्रे पर मुझे पूरे जीवन को ले जाना है। उस समय उथल पुथल होती है, लगभग एडोलेसेंस की तरह आपके जीवन बहुत कुछ उथल पुथल होती है। कई लोग पीछे मुड़ के देखने लगते हैं, उनको बुरा भी लगता है कि शायद मैंने जीवन में कुछ गलत किया, कुछ समझते हैं कि हमने तो ना जाने क्या अद्भुत किया, लेकिन उनके मन में एक छटपट भी होती कुछ बदलने की। तो ये जो बदलाव की घड़ी होती है, उस समय मूल चीज होती है कि अब आपके अंदर जो वो धारा बह रही है, जो थ्रेड है एस्पिरेशन का, उसको पकड़ना, और बाहर से उसको आप नया रूप, क्योंकि वो रूप नया अगर हम नहीं देते हैं तो चीजें स्टाइफिल होके समाप्त हो जाती हैं। तो लगभग यही चीज हम आज देख रहे हैं कि सनातन धर्म फिर से एक प्रकार से जागृत हो रहा है, और ये होना ही है, और पूरे विश्व में ये आज की घटना नहीं है। अगर आप श्री अरविंद का जो पहला भाषण है, उत्तर पारा भाषण, वो कब का है, 1909 का है, और श्री अरविंद ये उत्तर पारा भाषण किसके बुलाने पर दे रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हिंदू धर्म रक्षिणी सभा, सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू रिलीजन, और वहां श्री अरविंद स्पष्ट करते हैं कि भारत क्या है और हम हिंदू धर्म को कैसे बचा सकते हैं यदि हमको बचाने का ख्याल आए। वहां वो कोई बाहरी रूप की बात नहीं करते हैं, कि ऐसा उत्तरपाड़ा भाषण कर्मयोगी वॉल्यूम 7 में है, आई कैन रीड इट ऑल्सो. तो वो ये नहीं बात करते हैं कि हमको बाहर से ये करना है, बाहर से वो करना है, किंतु वो उसकी स्पिरिट की बात करते हैं. और वो स्पिरिट क्या है, वो कहते हैं ये सनातन धर्म ही भारतवर्ष की राष्ट्रीयता है, सनातन धर्म ही भारत की आत्मा है, और हमको इस मूल तत्व को ही बाहर लाना चाहिए. यदि हम उसको नहीं ला पाएंगे तो वो ये भी कहते हैं कि इस तरह की बातों का कोई मूल्य नहीं रहेगा कि अब मैं इसको सीधा एंड पे ले जाके, चूंकि खुल गया है तो थोड़ा सा पढ़ूंगा. कई जगहों पे उन्होंने इस बात को कहा है, एक और अपने भाषण में भी कहा है कि व्हाट इज द हिंदू रिलीजन, उसको कैसे हम उसकी रक्षा कर सकते हैं. तो थोड़ा सा हमें ये बार बार स्मरण करने की, दिस देन इज व्हाट आई हैव टू से टू यू. द नेम ऑफ योर सोसाइटी इज सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन, धर्म रक्षिणी सभा. वेल, द प्रोटेक्शन ऑफ द रिलीजन, द प्रोटेक्शन एंड अपरेजिंग बिफोर द वर्ल्ड ऑफ द हिंदू रिलीजन, दैट इज द वर्ड वर्क बिफोर अस. मान ले कि एक कार्य हमारे सामने है, बट वॉट इज द हिंदू रिलीजन, स्पष्ट होना चाहिए इसके बारे में. क्या है जिसको हम हिंदू धर्म कह रहे हैं, कौन डिफाइन करेगा. कोई कहता है कि ये इसके ग्रंथ है, ग्रंथ है, ग्रंथ के अंदर उसका मूल सार क्या छिपा हुआ है वो शेरविंद बता रहे हैं. व्हाट इज दिस रिलीजन विच वी कॉल सनातन इटर्नल, इट इज द हिंदू रिलीजन ओनली बिकॉज द हिंदू नेशन हैज केप्ट इट, because in this peninsula it grew up in the seclusion of the sea and the Himalayas, because in this sacred and ancient land it was given as a charge to the Aryan race to preserve through the ages. But it is not circumscribed by the confines of a single country. Pehli cheez humko ye yaad rakhni ki ye sanatan dharma to perish nahi ho sakta, aur ye pure vishw mein hai. हाँ, भारतवर्ष में इसके सारी ना केवल मूल तत्व को, जड़ों को, सबको ये विशेष रूप से रखा गया, लेकिन जहां भी एक विचार होता है जो सनातन सभ्यता से जुड़ा हुआ विचार है. कुछ समय पूर्व अमेरिका की एक स्टडी हो रही थी जिसमें लोग कह रहे थे, अरे ऐसा लगता है ये लोग कहते नहीं है, लेकिन 75% की जो मान्यता है वो तो हिंदू रिलीजन वाली है. बहुत आश्चर्य की बात है. यहां तक कि पुनर्जन्म, अगर आप आज देखेंगे पुनर्जन्म, ईश्वर हमारे अंदर है, यह मान्यता है सेमिटिक रिलीजन में नहीं है. भगवान सबके अंदर है, अंतर्यामी है, पाप पुण्य के परे, ये कई सारी मान्यताएं हैं, दंड पुरस्कार के परे है जो कार्मिक विधान है, ये सारी मान्यताएं अब संसार में आ रही हैं. लेकिन हम में से कई लोग हैं जो अब भी उसको पकड़े हैं, ये भी आवश्यक है जानना. ऐसे लोग हैं जो यहां तक पूछते हैं कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, जब श्री अरविंद कई चीजें जो नई प्रकट कर रहे हैं हम क्यों नहीं स्वीकार कर पाते हैं कई लोग, क्योंकि हमने हिंदू रिलीजन का एक बड़ा संकीर्ण, जिसको स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, श्री अरविंद भी कहते हैं, देयर इज ए नैरो एंड ए वाइड सनातन धर्म. तो हमको वो नैरो सनातन धर्म जो केवल बाहरी रूप को पकड़ता है चीजों के और उसकी आत्मा उसमें से विलुप्त हो गई है, उससे बाहर निकल के उसके एक विशाल समग्र रूप को पकड़ना है. बिकॉज इट इज द यूनिवर्सल रिलीजन विच एम्ब्रेसेस ऑल अदर्स. इफ ए रिलीजन इज नॉट यूनिवर्सल इट कैनॉट बी इटर्नल. ए नैरो रिलीजन, ए सेक्टेरियन रिलीजन, एन एक्सक्लूसिव रिलीजन कैन लिव ओनली फॉर ए लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड पर्पस. कई बार मुझे आश्चर्य होता है जब कई भारतीय वो दीवार करते हैं, उन्होंने जो कुछ पढ़ा है शास्त्रों में और श्री अरविंद के अनुभव को, आश्चर्य होता है अब कहां से सनातनी हो. श्री अरविंद तो समावेश की बात करते हैं, समग्रता की बात करते हैं, किसी को नहीं नकारते. अगर आप श्री अरविंद की पढ़ें राइटिंग्स तो यहां तक कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ज्यू, सबको अपना अपना स्थान, अपनी अपनी भूमि दे दी है उन्होंने अपने वास्ट यूनिवर्सल विजन में. हिंदू तो है ही है, वो तो स्पष्ट है, हर किसी की अपनी एक ग्राउंड उन्होंने दिया है कि इसका ये प्रयोजन है उनके, अगर मैप को देखें विस्तार से। और भारतीय हैं कई जो इसलिए नहीं स्वीकार करते हैं क्योंकि श्री अरविंद मायावाद को अंतिम सत्य नहीं बताते हैं, जो बहुत आश्चर्य की बात है। तो यहां हम लोगों को बहुत सचेत होना है। इट इज द वन रिलीजन विच इंसिस्ट एवरी मोमेंट ऑन द ट्रूथ विच ऑल रिलीजन्स एक्नॉलेज दैट ही कैपिटल एच इज इन ऑल मैन एंड ऑल थिंग्स एंड दैट इन हिम बी मूव एंड हैव आर बीइंग। ये श्री अरविंद एक फंडामेंटल एक्सपीरियंस बताते हैं, ईश उपनिषद का अनुभव है। और अभी थोड़ी देर पहले इसी की बात हम लोग बात बात में कर रहे थे, सर्व खल विदम ब्रह्मन, यही एक रिलीजन है जिसमें ये भगवान की ये त्रिविध अनुभव या रियलाइजेशन संसिद्धियां हैं। पहला, सबके अंदर भगवान है, कण कण में व्याप्त है। तो यदि सब में भगवान है तो आप किसको डिस्कार्ड कर रहे हो? कई बार आश्चर्य होता है जब लोग कहते हैं कि नहीं ये माया है, तो मैंने कभी कभी पूछा भी है, यह कौन कह रहा है ये माया है? ये एक मनुष्य कह रहा है कन्विंसिंगली। तो मनुष्य क्या है? एक इल्यूजन है, इल्यूजनिज्म की थ्योरी के द्वारा। उसकी देह भी इल्यूजन है, उसकी वाणी भी इल्यूजन है। तो ऐसा इल्यूजन तो अद्भुत है कि जो एक इल्यूजन के माध्यम से सत्य प्रकट कर रहा है। यदि इस मिट्टी के अंदर से एक श्री रामकृष्ण, विवेकानंद, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य स्वयं, रमन महर्षि, श्री अरविंद श्री कृष्ण तो इल्यूजनिज्म की बात नहीं करते, तो हम उनको अलग, ये प्रकट हो सकते हैं तो ये कहां है इल्यूजन? और यदि हम कहते हैं फिर भी इल्यूजन है, तो इस इल्यूजन का कहां अंत है? फिर तो कोई कह देगा कि आपका वो एक का एक्सपीरियंस भी इल्यूजन है। तो यहां पर ये हमारा फेस आईडी मांग रहा है। तो मूल चीज इसमें यही है कि हमको ये स्पष्ट होना है कि हम सनातन धर्म को कौन कैसे डिफाइन कर रहा है। और मैं समझता हूं कि इसमें जो चीज हम मिस करते हैं, जो मेरा, क्योंकि कभी कभी आपके पास बहुत सारी किताबें होती हैं तो भी समस्या होती है, ये उसकी तरह है जिसके पास बहुत आंसर्स हैं कि वो क्वेश्चन ही भूल गया है कि हमारी खोज क्या थी, आंसर आ गए। और ऐसे लोग हैं जो मिला हूं मैं, जो बहुत कुछ बोलते हैं वेदांत पर, इस पर। तो मैं कभी कभी पूछता हूं, तुम्हारी क्या खोज है, तुम क्या खोज रहे हो? द्वैत अद्वैत तो सब ठीक है। तो उस प्रकार की ये चीज है कि इट इज द वन रिलीजन विच इंसिस्ट एवरी मोमेंट ऑन द ट्रूथ विच ऑल रिलीजन्स एक्नॉलेज। इट इज द वन रिलीजन विच एनेबल्स अस नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड एंड बिलीव दिस ट्रूथ बट टू रियलाइज इट विद एवरी पार्ट ऑफ आवर बीइंग। समग्र शब्द का अर्थ खत्म हो जाता है यदि ये इल्यूजन है। ये बार बार कई जगहों पे मैं ये स्ट्रेस करके, मुझे लगता है ये अभी भी स्ट्रेस नहीं हुआ है, पूरी तरह मनुष्य की, भारतीयों की मानसिकता में नहीं घुसा है कि इल्यूजनिज्म को त्यागो, मायावाद को। यहां तक कहते हैं मां श्री अरविंद की एक कालखंड आएगा जब भारतीयों को पूरी तरह एंगेज होंगे जीवन के साथ, जैसे एक अज्ञानी एंगेज होता है, वो बेटर है देन इल्यूजनिज्म। आप जीवन से जुड़ोगे, जुड़ो उसको, अनुभव करो। और सीधा अभी भी आप देखिए, मैंने बताया ना कुंभ का भी उदाहरण दिया, सारे वो बाबा जी जो इल्यूजनिज्म, अंत में ये श्री कृष्ण ने कहां इल्यूजनिज्म की बात की है? तो लोक संग्रहार्थ की बात करते हैं। तो श्री अरविंद हमको बता रहे कि ये जीवन क्या है, ये लीला वासुदेव की है। ये बहुत अद्भुत बात है, ये भगवान का प्रकटन है। और फिर कितनी सुंदर बात, इट इज द वन रिलीजन विच शोज अस हाउ वी कैन बेस्ट प्ले अवर पार्ट इन दैट लाइफ, इट्स सटलेस्ट लॉज एंड इट्स नोबलेस्ट रूल्स। अब अगर जीवन में आप ये कहते हो कि आपको रोल प्ले करना है, तो तभी संभव है ना जब रोल में कोई रियलिटी है। ये कोई मॉक रोल थोड़ी है कि किसी ने आपको दे दिया कि भाई ये तो इल्यूजन है, तब तो रोल का कोई मतलब नहीं है। यानी ये एक ऐसा धर्म है जिसमें डिवाइन विल के प्रकटन की बात है, और वो डिवाइन विल का प्रकटन कोई मानवीय नियम या अति मानवीय नियम जो अकाट्य नियम हर समय के लिए, ऐसा नहीं दिया गया है। योग के द्वारा मनुष्य के हृदय में उद्भासित होता है कि ईश्वर का संकल्प इस समय क्या है। आप इसको कोई स्टैंडर्ड रूल बुक में नहीं डाल सकते हैं। तो ये जो रूल की बात है जो मनुष्य के अंदर प्रकट होता है, ईश उपनिषद में भी बात है, गीता में भी इसकी बात है, श्री अरविंद इसको विस्तार से बताते हैं। तो ईश्वर केवल एक, मैं पढ़ रहा था या सुन रहा था, कोई कह रहा है कि एक फंडामेंटल ट्रूथ जो हिंदू रिलीजन बताता है कि ये सब निरपेक्ष है, सॉरी सापेक्ष है, रिलेटिव है। ओके, वेयर डज दिस टेक यू कि एब्सोल्यूट ट्रूथ केवल एक है, ये सब रिलेटिव है। अब देखिए, अगर आप इस सत्य को सही ढंग से नहीं पकड़ेंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ? आप जो मर्जी कर सकते हो, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट ट्रूथ केवल एक है। लेकिन यदि आप ये देखते हैं कि ये रिलेटिव ट्रूथ, जिसको शेरविंद कहते हैं लेसर ट्रूथ्स परमिसेबल ऑन द वे, इनके माध्यम से वो एब्सोल्यूट ट्रूथ स्वयं को एक्सप्रेस कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, प्रकट कर रहा है, तब आप ये सारे जो रिलेटिव ट्रूथ्स हैं इनको एक सीढ़ी के रूप में देखते हैं। अदरवाइज सब रिलेटिव है, सब सापेक्ष है, केवल एकमात्र एक सत्य है। तो उसका और इसका संबंध, वहां पे डिवाइन विल की बात होती है कि दिव्य संकल्प जिसके जो हर समय मनुष्य के अंदर प्रकट होता है। और इसके कई सारे जो सूक्ष्म नियम हैं, इट इज द वन रिलीजन विच डज नॉट सेपरेट लाइफ इन एनी स्मॉलेस्ट डिटेल्स फ्रॉम रिलीजन, विच नोज व्हाट इमॉर्टेलिटी इज एंड हैज अटर्ली रिमूव्ड फ्रॉम अस द रियलिटी ऑफ डेथ। ये श्री अरविंद बताते हैं और फिर कहते हैं कि मैं यहां बोलने कुछ और आया था, लेकिन मैं बोल वो रहा हूं जो वासुदेव की लीला है। और अंत में कहते हैं कि जिस नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं वो ना पॉलिटिक्स है बल्कि एक धर्म है, एक फेथ, एक श्रद्धा है, एक क्रीड है। आई सी इट अगेन टूडे बट आई पुट इट इन अनदर वे। आई से नो लॉन्गर दैट नेशनलिज्म इज ए क्रीड, ए रिलीजन, ए फेथ। आई से दैट इट इज द सनातन धर्म विच फॉर अस इज नेशनलिज्म। यानी भारतवर्ष का महत्व ही यही है, उसको प्रकट करना है सनातन धर्म के सत्य को। लेकिन वहीं पर बात अटक जाती है, किसको हम सनातन धर्म कह रहे हैं? क्या ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या? ठीक है, मिथ्या शब्द की कई विवेचनाएं हैं। एक जो उसकी सबसे सटीक विवेचना यह है कि ये चीजें वैसी नहीं है जैसी प्रतीत होती हैं, वहां तक मिथ्या शब्द सही है, थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। लेकिन मिथ्या एक एब्सोल्यूट इल्यूजन के सेंस में, एक नॉन रियलिटी के रूप में, ये नहीं है। तो चीजें अगर वैसी हैं जैसी हैं, वैसी नहीं प्रकट हो रही हैं, दिख रही हैं, तो इससे दो अर्थ निकलते हैं। एक तो हम जैसी हैं वैसी जान लें, या जैसी हैं हम वैसी उनको जीवन में प्रकट करें। तो जो ओरिजिनल सनातन धर्म है वो मिथ्या से सत्य की ओर नहीं जाता है, वो मिथ्यात्व में सत्य को प्रकट करता है। और इसका एक उदाहरण जिससे हम लोग रुक सकते हैं कि एक बच्चा है, उसको आपने एक इमेज दी कि तुम इमेज को उतारो, तो वो क्या करता है? जब छोटा बच्चा होता है आप एक इमेज देते हैं कि ये चिड़िया है, वो उसको बना रहा है, देख करके बना रहा है, ये उसका प्रारंभ है। उसमें वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, फिर आप उसको और आगे ले जाते हैं, फिर अंत में आप ये कहें अब कोई इमेज नहीं है, तुम अपनी कल्पना से एक चिड़िया बनाओ। अब क्या है, उसके अंदर एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन आ रहा है। तो इस प्रकार से ये चीज आगे बढ़ती जाती है। लेकिन जहां हम ये कह देते हैं कि ये सारा एक वर्ल्ड ऑफ रिलेटिविटीज है, इल्यूजन है, इसको छोड़ करके तुमको सत्य की भूमि पर जाना है, तो हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अब इसी कंटेक्स्ट में अंत में, क्योंकि ये टॉक विशेष रूप से अयोध्या में जो कार्यक्रम हो रहा है श्री अरविंद साधनालय में, वहां पर ये परिसर में ये टॉक के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, तो मेरा ये मानना है और मेरा ये कहना है कि कुछ समय के लिए हम अपने सारे पूर्वाग्रहों को किनारे कर दें, पक्ष विपक्ष सबको किनारे कर दें, और हम सब थोड़ी देर बैठ के अपने हृदय में महसूस करें कि श्री माँ क्या चाहती है, हम क्या चाहते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, कोई और क्या चाहता है, हमारा मन क्या कहता है, हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, हमारी आइडियलिज्म क्या कहती है। इन सब को हम किनारे रख दें और शांत चित्त से अपने हृदय के अंदर महसूस करें कि माँ क्या चाहती है। और जो माँ चाहती है, यदि हम उसको महसूस कर सकें, उसको प्रकट कर सकें, प्रकट करने में सहायक हो सकें, तो वही सर्वोपरि चीज है। अंत में कह सकता हूं मैं कि बहुत पहले शेरविन साधनालय जब मैं गया था तो मेरे अंदर एक विजन आया था जो मैंने शेयर भी किया था उसी समय, कि जहां वो खाली प्लॉट है लैंड का, जमीन का, मेरे हृदय में ये आया था कि यहाँ पर भारतवर्ष को एक इंडोलॉजी यानी भारत के ऊपर, भारतीय संस्कृति के ऊपर एक वहाँ बहुत सुंदर अद्भुत म्यूजियम बने, और नाम म्यूजियम वगैरह वो एक अलग बात है, जिसमें श्री अरविंद का भारत, श्री अरविंद की दृष्टि से भारतवर्ष को प्रेजेंट किया जाए, श्री अरविंद की दृष्टि से रामायण, श्री अरविंद की दृष्टि से राम का चरित्र, श्री अरविंद की दृष्टि से श्री कृष्ण, श्री अरविंद की दृष्टि से महाभारत, श्री अरविंद की दृष्टि से उनका अवतार और जो रोल हुआ है, श्री अरविंद की दृष्टि से भारत, श्री अरविंद की दृष्टि से कई सारे जो संत परंपराएं निकली हैं, श्री अरविंद की दृष्टि में द्वैत अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत इत्यादि का क्या स्थान, ये सब कुछ श्री अरविंद के लिटरेचर में है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, और श्री अरविंद की दृष्टि से भारत का आगे का पुनरुत्थान कैसा होगा। तो मेरी माँ के चरणों में यही प्रार्थना है कि किस तरह से हो, कैसे हो, मैं नहीं जानता, लेकिन वो भूमि है वहाँ, शायद इसीलिए मार्क्ड है, शायद इसीलिए वो राम मंदिर की इतना साथ साथ लगी हुई है कि उसके अंदर एक ऐसा अद्भुत म्यूजियम आए, एक सेंटर आए जैसा कहीं नहीं है, जिसमें और श्री अरविंद ने सब कुछ पर लिखा हुआ है, और क्यों नहीं बन सकता है। मैं अभी कहाँ की बात है, जहाँ स्वर वेद मंदिर बना हो वाराणसी से, सारनाथ के पास है, तो मैं चला गया, मुझे लगा कि वाराणसी गया था, लोगों ने कहा स्वर वेद, तो मुझे लगा वेदों के ऊपर कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक महान ऋषि हुए, उन्होंने उनके अनुसार कई चीजों को जो उन्होंने अनुभव किया उस पर, अब बहुत भव्य है, इट्स बेसिकली वन मैन शो। एट वन लेवल आई वॉज डिसअपॉइंटेड, मतलब आप बाहरी चीजों को छोड़ दो तो जब वेद से आपको आता है कुछ और, कई चीजें आपके हृदय में आती हैं, तो यहां क्यों नहीं हम बना सकते हैं श्री अरविंद के प्रकाश में भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, लिटरेचर के बारे में लिखा है, हर चीज के बारे में लिखा है उन्होंने, क्या नहीं लिखा है, भारत के कौन कौन से महान कवि हैं जिसमें वो व्यास, वाल्मीकि और कालिदास को इंक्लूड करते हैं, कुछ कुछ हो, उनकी कुछ पंक्तियां हो, कुछ उनके लिटरेचर के बारे में हो, श्री अरविंद की दृष्टि में वेद का रहस्य क्या है, मूल चीजें, श्री अरविंद की दृष्टि में उपनिषद क्या है, श्री अरविंद की दृष्टि में गीता ने क्या एक जो मानव चेतना को उसका मूल रूप से क्या दिया और क्या दे रही है, उसका सार सब कुछ लिखा है। और श्री अरविंद की दृष्टि में विश्व का इतिहास, विश्व की वे प्रमुख घटनाएं जिन्होंने जीवन को एक नया मोड़ दिया। तो ये तो मेरी बस एक माँ के चरणों में प्रार्थना है, कहाँ होगा कैसे होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये अवसर है और इसको एक विश्व में एज सीडिंग बीज डाल रहा हूँ। बहुत सुंदर होगा यदि वो श्री अरविंद साधनालय के अंदर ही इस तरह की कोई चीज़ बन सके। जय माँ।